नमस्कार भारत, तारीख 21 नवंबर दिन बृहस्पतिवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। ब्रिटेन शाही परिवार के ड्यूक ऑफ आर्क प्रिंस एंड्रयू शाही दायित्वों से पीछे हटे।
I'm not surprised about this evening's news. I'm surprised that it has come so late. His position was untenable.
झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में आरोप और प्रत्यारोपों का सिलसिला है जारी।
भारतीय जनता पार्टी इस कानून में जो संशोधन हो रहे थे उसको वापस लेने के नाम पर आज के मतदाताओं को प्रभावित करने का काम उनके द्वारा किया गया है।
क्यों हो रहे हैं बोलीविया में सरकार विरोधी प्रदर्शन, क्या है वहां पर संकट, सुनिएगा दुनिया जहान में। कार्यक्रम में खबरें और भी होंगी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, सृष्टि श्रीवास्तव से। ब्रिटेन के शाही परिवार के सदस्य प्रिंस एंड्रयू ने शाही दायित्वों से पीछे हटने की घोषणा की है। ड्यूक को अमरीकी फाइनेंसर और यौन शोषण के आरोपी जेफरी एपस्टीन के साथ अपनी दोस्ती को लेकर काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। एपस्टीन पर आरोप लगाने वाली एक महिला वर्जीनिया ग्रिफे ने यह भी दावा किया है कि उन्हें 3 बार प्रिंस एंड्रयू के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया था। प्रिंस एंड्रयू लगातार इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं। उन्होंने अब कहा है कि वो यौन शोषण के अभियुक्त एपस्टीन के केस में सभी पीड़िताओं सहित हर उस शख्स के प्रति सहानुभूति रखते हैं जो चाहते हैं कि इस मामले में न्याय हो। ग्लोरिया एलॉट इस यौन शोषण के मामले में पीड़िताओं की ओर से वकील हैं। उन्होंने प्रिंस एंड्रयू को जांच में सहयोग करने के लिए कहा है।
I'm very glad that Prince Andrew has indicated that he will be willing to speak to law enforcement.
मुझे बहुत खुशी हुई है कि प्रिंस एंड्रयू ने यह कहा है कि वो कानूनी एजेंसी की मदद करने के लिए और जांच में सहयोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस बारे में बात रखते हुए उन्होंने ये क्यों कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो ऐसा करेंगे। जेफरी एपस्टीन मामले में पीड़िताएँ पहले से ही कानूनी मदद ले रही हैं। उन्होंने माना है कि इस मामले में जाँच के लिए हर तरह की जानकारी देना ज़रूरी है। प्रिंस एंड्रयू को भी अब बिना किसी शर्त के और बिना देर किए जांच में सहयोग करना चाहिए। ये थे पीड़िताओं की वकील ग्लोरिया एलॉट के शब्द। इसराइल में हाल ही में हुए आम चुनाव के 2 महीने बाद फिर से गठबंधन सरकार बनाने के प्रयास विफल हो गए हैं। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के मुख्य प्रतिद्वंदी रहे बेनी गैंट्स ने घोषणा की है कि वह उन्हें दिए गए समय तक कोई भी सरकार बनाने में असमर्थ रहे हैं। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए गैंट्स ने नेतन्याहू और उनके सहयोगियों पर व्यक्तिगत हित को देश से ऊपर रखने का आरोप लगाया।
ב-28 הימים האחרונים הפכתי כל אבן.
बीते 28 दिनों में मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद भी मैं इसराइल में सरकार नहीं बना सका हूं। मैंने हर मुमकिन प्रयास किए कि इसराइल में एक सम्मान नैतिक मूल्य वाला एक नेतृत्व सत्ता में आ सके, लेकिन यह एक दक्षिणपंथी पक्ष है और जिसे व्यक्तिगत हित के अलावा कुछ भी देखने में मुश्किल होती है। यह सिर्फ वही देखने पर जोर देता है चाहे फिर दूसरी ओर अस्पताल में पड़े मरीज क्यों ना हो। ये थे बेनी गैंट्स के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। एनडीए सरकार ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल समेत 5 सरकारी कंपनियों के विनिवेश को मंजूरी दे दी है। बुधवार रात को एक संवाददाता सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार के इन बड़े फैसलों की जानकारी दी है। वित्त मंत्री ने बताया कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ कंटेनर कॉरपोरेशन, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉरपोरेशन और साथ ही में शिपिंग कॉरपोरेशन के विनिवेश को भी मंजूरी दे दी गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बोलीविया में मंगलवार को प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में हुई 8 लोगों की मौत की तत्काल जाँच करवाए जाने की मांग की है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पुलिस और सैनिकों ने अल ऑल्टो शहर में पूर्व राष्ट्रपति इवो मोरालेस के समर्थकों पर गोलियां चलाईं। 10 दिन पहले उनके इस्तीफे के बाद से यहां विरोध प्रदर्शन और हिंसा में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। मोरालेस को मेक्सिको में शरण दी गई है। बोलीविया की अंतरिम राष्ट्रपति जीनिन एनेज ने नए चुनाव के प्रस्ताव के लिए कांग्रेस को भी एक बिल भेजा है, लेकिन उन्होंने मतदान के लिए कोई भी तिथि निर्धारित नहीं की है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। रेडियो के साथ साथ आप इस कार्यक्रम को bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। जैसा कि अभी आपने समाचारों में सुना, ब्रिटेन के शाही परिवार के सदस्य ड्यूक ऑफ आर्क प्रिंस एंड्रयू का कहना है कि वो अपने शाही दायित्वों से पीछे हट रहे हैं क्योंकि जेफरी एपस्टीन का मामला शाही परिवार के लिए एक बड़ा व्यवधान बन गया है। 59 साल के प्रिंस एंड्रयू ने कहा कि उन्होंने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए महारानी से अपने कर्तव्यों से पीछे हटने की अनुमति मांगी है। उनका कहना था कि यौन शोषण के अभियुक्त जेफरी एपस्टीन के केस में सभी पीड़िताओं समेत हर उस व्यक्ति के प्रति उनकी सहानुभूति है जो चाहते हैं कि ये मामला न्याय के साथ खत्म हो। बीते कई महीनों से ड्यूक एपस्टीन के साथ अपने संबंधों को लेकर कई सवालों का सामना कर रहे थे। एपस्टीन ने अगस्त में सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोपों पर मुकदमे के ट्रायल के दौरान ही खुदकुशी कर ली थी। बकिंघम पैलेस ने प्रिंस एंड्रयू के इस फैसले को उनका व्यक्तिगत फैसला बताया है। एक बयान में ड्यूक ने कहा कि मैं जेफरी एपस्टीन के साथ अपने संबंधों पर अफसोस करता हूं। महारानी के पूर्व प्रेस प्रवक्ता डिकी ऑर्बिटर ने कहा कि ये घोषणा बहुत पहले ही हो जानी चाहिए।
I'm not surprised about this evening's news. I'm surprised that it has come so late. His position was untenable when it came to.
Dickie Orbiter कह रहे थे कि मैं इस खबर से आश्चर्यचकित नहीं हूं। मैं अचंभित इस बात पर हूं कि इसमें आखिरकार इतनी देरी क्यों हुई। उन्होंने संकट का समाधान खोजने और अपना पक्ष रखने के लिए इंटरव्यू दिया, लेकिन इससे संकट खत्म करने के बजाय ये गहरा हो गया और इसके बाद इनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। शाही कमेंट्रेटर कैटी निकोला ने कहा कि प्रिंस एंड्रयू ने कई गलतियां की।
Millions that were watching saw, I think, the Pandora's box that actually the Duke opened. There were massive.
कैटी निकोला कह रही थी कि लाखों लोगों ने देखा कि उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी बातें स्वीकार की, लेकिन उन्होंने पीड़िता के प्रति कोई संवेदना नहीं दिखाई। दरअसल ये पूरा मामला क्या है, इस मामले को विस्तार से समझने के लिए मैंने अब से कुछ देर पहले लंदन में बीबीसी संवाददाता गगन सबरवाल से बात की और यही कहा कि विस्तार से हमारे श्रोताओं को समझाइए कि ये पूरा प्रकरण क्या है और इसका प्रिंस से क्या लेना देना।
लास्ट सैटरडे को क्वीन के जो छोटे बेटे हैं प्रिंस एंड्रयू ने बीबीसी न्यूज नाइट के प्रोग्राम को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था जिसपे उन्होंने डिटेल में अपने फ्रेंडशिप के बारे में बात की। ना ये फ्रेंडशिप उनकी एक अमेरिकन फाइनेंसर जेफरी एपस्टीन के साथ था। ना जेफरी एपस्टीन कुछ महीने पहले उनको न्यूयॉर्क में अरेस्ट किया गया क्योंकि कुछ लड़कियों ने उनको एक्यूज किया और बिटवीन 2002 एंड 2005 जेफरी एपस्टीन ने इन अंडर एज लड़कियों को पैसे दिए ताकि वो सेक्सुअल एक्ट्स परफॉर्म करे उनके घर में। इसकी वजह से जेफरी एपस्टीन को अरेस्ट किया गया और उनका बेल कुछ महीने पहले रिजेक्ट हुआ और प्रेशर में आके उन्होंने प्रिजन के अंदर सुसाइड कमिट किया। प्रिंस एंड्रयू पे बहुत सारा प्रेशर आया क्योंकि लोगों ने ये बोला कि प्रिंस एंड्रयू जेफरी एपस्टीन के बहुत ही क्लोज दोस्त है। इसके अलावा वन ऑफ द गर्ल्स ने इतना भी बोला कि जेफरी एपस्टीन ने उसको फोर्स किया प्रिंस एंड्रयू के साथ सेक्सुअल रिलेशंस रखने के लिए और प्रिंस एंड्रयू ने इस लड़की के साथ एक बार नहीं बल्कि 3 बार सेक्सुअल एक्ट्स परफॉर्म किए। नाउ इसकी वजह से प्रिंस एंड्रयू और रॉयल फैमिली के ऊपर इमेंस प्रेशर था और बहुत महीनों के बाद बीबीसी न्यूज नाइट ने फाइनली ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हासिल किया। ये इंटरव्यू प्रिंस एंड्रयू चाहता था कि लोगों को वो बता सके एग्जैक्टली जेफरी एपस्टीन के साथ और ये होप कर रहे थे कि वो अपना नेम क्लियर कर सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से उन्होंने वो इंटरव्यू दिया, जिस टोन से उन्होंने बात की, एक्चुअली ये पूरा इंटरव्यू बैकफायर हुआ। इंटरव्यू के दौरान प्रिंस एंड्रयू ने रिग्रेट नहीं किया, अपोलोजाइज नहीं किया अपने रिलेशनशिप को लेके जेफरी एपस्टीन के साथ। इसके अलावा उन्होंने अपोलोजाइज और सिंपथी भी नहीं दिखाई इन विक्टिम्स को लेके। तो इसकी वजह से पूरी दुनिया में, ब्रिटेन में लोग बहुत ही शॉक पे रॉयल फैमिली को बहुत सारा प्रेशर का सामना करना पड़ा और मंडे प्रिंस एंड्रू के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जिनके साथ उनके टाइप्स थे उन्होंने अपना सपोर्ट विड्रॉ किया. चार्टर्ड स्टैंडर्ड बैंक, ब्रिटिश टेलीकॉम्स, कुछ फोर ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज ने भी अनाउंस किया कि वो अपना रिलेशनशिप प्रिंस एंड्रू के साथ टर्मिनेट कर रहे हैं.
अब जबकि प्रिंस एंड्रू ने कहा है कि वो अपनी रॉयल ड्यूटीज जो है वो परफॉर्म नहीं करेंगे, तो जो रॉयल फैमिली है उनके लिए ये कितना बड़ा चैलेंज है?
मोहनलाल जी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. दिस इज अनप्रेसिडेंटेड. ऐसा ब्रिटेन की रॉयल फैमिली में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने पब्लिक लाइफ, पब्लिक ड्यूटी से स्टेप डाउन किया है एक स्कैंडल की वजह से.
गगन सबरवाल बीबीसी संवाददाता लंदन से जानकारी दे रही थी कि किस तरह से ब्रिटेन के शाही परिवार के ड्यूक ऑफ आर्क प्रिंस एंड्रयू शाही दायित्वों से पीछे हटे हैं और ये पूरा प्रकरण क्या था.
नमस्कार भारत, शॉर्ट वेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 6070, 7290 और 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर.
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत. झारखंड विधानसभा चुनावों के कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा रांची में हैं. वो आज मीडिया से बात करेंगे. इधर विभिन्न राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है. इस कड़ी में गृहमंत्री व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह भी आज झारखंड में दो चुनावी सभाओं को संबोधित करने वाले हैं. इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा है कि झारखंड में चुनाव प्रचार की उनकी कोई योजना नहीं है. रांची से रवि प्रकाश की रिपोर्ट.
मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कल रांची के एक होटल में विभिन्न सियासी पार्टियों के प्रतिनिधियों से अलग अलग मुलाकातें की. इस दौरान उन्होंने विभिन्न दलों की राय जानी और अपने अधिकारियों के साथ चुनाव कार्यों की समीक्षाएं भी की. वे आज मीडिया से भी बातचीत करेंगे. उनकी बैठक में शामिल होने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की है. उन्हें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस शिकायत को गंभीरता से लेगा.
15 नवम्बर को इस देश के वन एवं पर्यावरण मंत्री माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा भारतीय वन कानून 1927 में संशोधन को लेकर के जो मामले चल रहे थे कोर्ट में, उन मामलों को वापस लेने की घोषणा की गई और वो भी ऐसे समय में जब इस झारखंड राज्य में विधानसभा का आम चुनाव संपन्न होना है. सीधे तौर पे कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस कानून में जो संशोधन हो रहे थे उसको वापस लेने के नाम पर राज्य के मतदाताओं को प्रभावित करने का काम उनके द्वारा किया गया है.
इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदोष सहदेव ने कहा कि मुद्दा भी विपक्ष अनर्गल आरोप लगा रहा है. उन्होंने बताया कि भाजपा अपने प्रचार अभियान में व्यस्त है. पार्टी अध्यक्ष अमित शाह झारखंड अपने चुनाव प्रचार का आगाज करने वाले हैं. इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी चुनावी रैलियां होंगी. प्रदोष सहदेव ने बीबीसी से कहा,
देखिए भारतीय जनता पार्टी झारखंड में स्थायी सरकार और विकास के मुद्दे पर जनता के बीच में जा रही है. पहली बार झारखंड ने स्थायी सरकार देखा है और स्थायी सरकार के मिलने से किस तरीके से विकास हुआ, कहां हमारी गिनती बीमारू राज्यों में होती थी और अब हम एक तेजी से विकास करते हुए राज्य के रूप में पूरे राष्ट्र में स्थापित हुए हैं. ये डिफरेंस लोगों को भी दिख रहा है और इन्हीं मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जा रहे हैं. कल हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का आगमन हो रहा है. वो 11 बजे मैनिका विधानसभा में एक सभा को संबोधित करेंगे. उसके बाद 1 बजे लोहरदगा में भी एक बैठक को और एक बड़े कार्यक्रम को और एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे. तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं का आगमन शुरू हो गया. प्रधानमंत्री जी भी 25 पाने वाले हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार अपना प्रचार अभियान जारी रखे हैं. भाजपा अपने दम पर पूरे राज्य में 65+ के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करेगी.
इस बीच राज्य में सियासी गतिविधियां और तेज हो गई हैं. झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है. इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में पत्रकारों के एक सवाल पर कहा कि झारखंड में चुनाव प्रचार की उनकी कोई योजना नहीं है. उनकी ही पार्टी के सांसद ललन सिंह ने मंगलवार को कहा था कि नीतीश कुमार जमशेदपुर पूर्वी सीट से मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़ रहे सरयू राय के पक्ष में चुनावी सभाएं कर सकते हैं. नीतीश कुमार के इस बयान के बाद अब इन चर्चाओं पर विराम लग गया है. इस बीच राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से लाखों रुपए की बरामदगी की गई है. आरोप है कि इन पैसों से चुनाव को प्रभावित करने की तैयारी थी. रवि प्रकाश, बीबीसी रांची.
बात महाराष्ट्र की, जहां पर शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश में है। शिवसेना ने कल एक बार फिर से कहा कि राज्य में जल्द सरकार बनेगी। इस बीच दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पर कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं की बैठक हुई। कल के घटनाक्रम का परिणाम क्या निकला, आदर्श राठौर ने बात की बीबीसी संवाददाता अभिजीत कांबले से, जो कि पूरे दिन घटनाक्रम पर नजर रखे हुए थे।
कल महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें जो एक तरीके का मतलब रुकाव आ गया है, जो सरकार बनने की जो कोशिशें हो रही थी वो कहीं ना कहीं आगे जाते हुए दिखाई दी है। शरद पवार ने जो बयान दिया था दो दिन पहले, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ में आने की जो अटकलें थी वो खत्म हो रही है और ये सरकार बनाने की कोशिश शायद आगे नहीं जा सकती, इस तरीके की चर्चा हो रही थी। लेकिन अगर कल के दिन की हम बात करें तो कल कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं की बैठक हुई है और उस बैठक से पहले कांग्रेस के नेताओं की सोनिया गांधी के साथ बैठक हुई है और इस बैठक के बाद पृथ्वीराज चौहान जो कांग्रेस के नेता है और नवाब मलिक जो एनसीपी के नेता है, उन्होंने जो मीडिया को बताया उससे लग रहा है कि सरकार बनाने की कोशिश में आगे जाने की कोशिश सरकार बनाने की कवायद में आगे जाने की कोशिश तीनों पार्टियों से हो रही है। कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई, इनके साथ हमने बात की, उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सोनिया गांधी ने हरी झंडी दिखाई है कि इस मामले में हम आगे जा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की जो भूमिका है उसको लेकर चर्चा थी कि कांग्रेस शिवसेना के साथ जा सकती है या नहीं, लेकिन हुसैन दलवाई जी ने हमें बताया है कि अब इस मामले में क्लैरिटी आ गई है और सोनिया गांधी खुद अब उन्होंने ही बोल दिया है कि आप लोग आगे जा सकते हैं शिवसेना के साथ सरकार बनाने में। तो एक तो ये चीज हुई है। दूसरी, अगर एनसीपी के लेवल पे बात करें तो एनसीपी के जो नेता हैं उनसे हमारी जो ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है उसमें भी उन्होंने ये बताया है कि जो विलंब हो रहा है उसमें कई कुछ चीजें ऐसी है जिसपे अभी तक एक राय नहीं बनी है इसलिए विलंब हो रहा है, लेकिन सरकार बनाने की कवायद बिल्कुल जारी है। और नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद हमें ऑफिशियली बताया है कि तीनों मिलकर सरकार बनाने की कोशिश के लिए हम प्रिंसिपली एग्रीड हुए हैं, तो इसलिए ये माना जा रहा है कि अब सरकार बनाने की कोशिश थोड़ी तेज होती दिखाई दी है।
बीबीसी मराठी संवाददाता अभिजीत कांबले जानकारी दे रहे थे। और अब अखबार के पन्ने पर रख लेते हैं। सृष्टि, आज के अखबार क्या कह रहे हैं?
जी सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज के जो तमाम बड़े अखबार हैं, अंग्रेज़ी हों चाहे हिंदी हों, उन्होंने ये जो एनडीए सरकार ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड सहित जो पांच कंपनियों को विनिवेश की मंजूरी दी है उन्हें अपने पहले पन्ने पे जगह दी है। ज़्यादातर जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सारी बातें कही हैं उनको भी बताया गया है। और जो दूसरी बड़ी खबर आज के अखबारों के पहले पन्ने पर है वो है गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से कल राज्यसभा में कहा कि देश के सभी नागरिकों को एनआरसी में शामिल किया जाएगा और इससे फ़र्क नहीं पड़ता उनका धर्म क्या है। शाह ने एनआरसी और नागरिकता संशोधन बिल में जो डिफरेंस है उसे भी बताया।
और नवभारत टाइम्स की जो हेडलाइन है वो मैं बता दूं, घुसपैठ बंदी देश भर में एनआरसी और अमित शाह का फोटो।
जी, और साथ ही में असम से रिलेटेड जो इस एनआरसी को लेकर खबर है उसे भी हर अखबार ने जगह दी है कि असम सरकार ने केंद्र से राज्य के जो मौजूदा एनआरसी है उसे खारिज करने का अनुरोध किया है। और जो असम के वित्त मंत्री हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा है कि इसमें कई गड़बड़ियाँ हुई हैं इसे लागू करने में। साथ ही में एक बार जेएनयू की खबर जो इस समय दिल्ली के दिल्ली में काफ़ी सुर्खियों में है कि किस तरह से दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में फ़ी हाइक को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहाँ पे जो एचआरडी मिनिस्ट्री है उसने स्टूडेंट से बात करने की कोशिश की है और जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट हैं वो अपना प्रदर्शन उन्होंने जारी भी रखा है। और साथ ही में अखबारों में एक विश्व की खबर जो है श्रीलंका से जुड़ी हुई कि जो राष्ट्रपति हैं नवनिर्वाचित गोटाबाया राजपक्षे, उन्होंने अपने बड़े भाई और जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनको प्रधानमंत्री बनाने का फैसला किया है, इसको भी सबने जगह दी है।
एक खबर मैं बता देता हूँ कि सबरीमाला पर विशेष कानून बनाए केरल, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और केरल सबरीमाला मंदिर के प्रशासन के लिए जनवरी 2020 तक एक विशेष कानून बनाए और इसमें मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के कल्याण से जुड़े पहलू भी शामिल होंगे। रिलायंस की जो पेट्रोल कंपनी है ये छठी सबसे बड़ी तेल कंपनी है और बीपी यानी कि जो दूसरी कंपनी है वो ब्रिटिश कंपनी वो पीछे हो गई है। तो ये आज की बड़ी खबरें, बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि। और अब कार्यक्रम में वक्त है दुनिया जहान का। बीते करीब एक महीने पहले बोलीविया में सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए। लोग 14 साल से राष्ट्रपति रहे एवो मोरालेस के इस्तीफे की मांग करते रहे। बढ़ते प्रदर्शनों को देखते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया और देश छोड़कर मैक्सिको की शरण ले ली। इधर देश की पूर्व डिप्टी स्पीकर ने खुद को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया, लेकिन इसके बाद प्रदर्शनों में और उग्रता देखने को आई। अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, दर्जन भर घायल हैं। दुनिया जहान की आज की कड़ी में बोलीविया के संकट पर सुनिए मानसी दास की पड़ताल।
दुनिया जहां 25 अक्टूबर 2019 लैटिन अमरीकी देश बोलीविया में 5 दिन पहले यानी 20 अक्टूबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे सामने आए। इनमें राष्ट्रपति इवो मोरालेस को अपने प्रतिद्वंदी कार्लोस मेसी से 10% अधिक वोट मिले थे, लेकिन जीत की घोषणा के चंद पलों बाद सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी उनके विरोध में सड़कों पर उतर आए। दक्षिण अमेरिका का 5वां बड़ा देश बोलीविया बीते करीब एक महीने से लगातार सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण चर्चा में है। 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला ये देश पूर्व में पेरू और चिली, पश्चिम में ब्राजील और दक्षिण में अर्जेंटीना और पराग्वे से घिरा है। 1825 के बाद से यहाँ अधिकतर समय सैन्य सत्ता रही और अधिकतर राष्ट्रपतियों का तख्ता पलट हुआ। 19वीं सदी के आखिर में स्थितियाँ थोड़ी बदली और मतदान के जरिए राष्ट्रपति चुने जाने लगे, हालांकि देश का नेतृत्व अधिकांश वक्त सैन्य अधिकारियों के हाथ में रहा। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ फॉरेन स्टडीज के रिटायर्ड प्रोफेसर अब्दुल नाफी बताते हैं,
बोलीविया एक बदकिस्मत देश है। जब ये आजाद हुआ, जो स्पेन के गोरे लोग थे वो हारे, जो लैटिन बोलीविया में पैदा हुए गोरे थे सत्ता उन्होंने संभाल ली अपने हाथ। ये एक अजीब आजादी, अजीब स्वतंत्रता मिली थी बोलीविया को, जिसमें इंडिजिनस आबादी का कोई किसी भी तरह से कोई रोल, कोई योगदान, कोई भूमिका थी नहीं कहीं दूर दूर भी। उनकी जमीनें हड़प कर लेना, उनकी भाषाओं को खत्म करना, फोर्स्ड असिमिलेशन, ये तो फिर भी किसी तरह से बच गए, क्योंकि इतनी ज्यादा जनसंख्या थी कि उसको खत्म नहीं कर पाए।
साल 2012 में हुई जनगणना के अनुसार बोलीविया में 41% लोग मूल निवासी हैं और यहाँ करीब 36 समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन इतने विशाल समुदाय को देश की सत्ता में जगह 2006 के बाद ही मिली। बोलीविया की अर्थव्यवस्था टिन, चांदी, जस्ता, सोना, स्मार्टफोन की बैटरी बनाने में इस्तेमाल होने वाले लिथियम और नेचुरल गैस पर निर्भर है। साथ ही अर्थव्यवस्था में कोको की खेती का अहम योगदान है। कोको से कोकेन नाम का नशीला पदार्थ बनता है और इसकी पत्तियां चाय की तरह उबालकर भी पी जाती हैं। 1980 के बाद से अमेरिका ने बोलीविया में कोका की खेती खत्म करने की कोशिशें तेज कर दी थी। अमेरिका का कहना था कि नशीले पदार्थों की सप्लाई में बोलीविया की भूमिका अहम है। इसका विरोध किया आयमारा समुदाय के इवो मोरालेस ने। किसानों के परिवार में जन्मे मोरालेस ने कोचाबाम्बा में कोको किसानों का यूनियन बनाया। 2002 में मोरालेस राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हुए, लेकिन जीत उन्हें नहीं मिली। 2006 में आखिरकार वो राष्ट्रपति बने। वो देश के इतिहास के पहले मूल निवासी हैं जो इस गद्दी तक पहुंचे।
De lo contrario, se lo demandarán. Queda usted posesionado como presidente.
वो बोलीविया के काफी लोकप्रिय नेता रहे और लगातार चुनाव जीतते रहे। वो कुल 13 साल 9 महीनों तक बोलीविया के राष्ट्रपति रहे। गरीबी से लड़ने और अर्थव्यवस्था में सुधार की उनकी नीतियों की काफी प्रशंसा भी हुई। गोवा यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस की हेड ऑफ डिपार्टमेंट अपराजिता गंगोपाध्याय बताती हैं,
बोलीविया की हालत जो थी बहुत ही ज्यादा खराब थी इकोनॉमिकली। मोरालेस आए तो सबसे पहले इंडिजिनस लोगों को रिकग्निशन मिली, उनको मेन स्ट्रीम में लाया गया, और उसके अलावा जो इकोनॉमिकली उन्होंने किया, उन्होंने सारे जितने इंडस्ट्रीज थे उनको नेशनलाइज किया। मोरालेस के पहले जो पीने का पानी था उससे लेके हर कुछ प्राइवेटाइज था।
लेकिन मामला तब बिगड़ा जब मोरालेस ने चौथी बार चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिसकी देश का संविधान इजाजत नहीं देता। राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें जीत तो मिली, लेकिन उन पर दबाव लगातार बढ़ रहा था। इस दौरान मतगणना के 24 घंटों ने इवो मोरालेस का भविष्य हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मतों की गिनती बीच में ही अचानक रोक दी गई और उसके ठीक 24 घंटों बाद मतगणना के नतीजे पेश किए गए। जहां पहले इवो मोरालेस अपने प्रतिद्वंदी से पिछड़ते दिख रहे थे, वहीं 24 घंटे के बाद इवो मोरालेस को विजयी घोषित कर दिया गया। प्रोफेसर अब्दुल नाफी कहते हैं,
اصل میں دو باتیں تھیں اس میں. ایک تو یہ تھا مورالیس سے خود غلطی ہوئی ہے. 2016 میں ایک ریفرنڈم ہوا تھا اور ایک عام رائے دیش کے اندر یہ تھی کہ ان کو چوتھی بار الیکشن کی اجازت نہیں ہے سمویدھان کے انترگت. آپ نے پھر چوتھی بار الیکشن لڑ لیا. اور دوسرا کیا ہوا, جو 24 گھنٹے ووٹ کی جو گنتی تھی وہ رک گئی. اس سے لوگوں کے دل میں اور شک پیدا ہوا. آرگنائزیشن ہے امریکن اسٹیٹ سے, ان کا بھی بیان آ گیا کہ ہاں اس میں گڑبڑی ہوئی ہے کاؤنٹنگ کے دوران. اب اس سے کیا ہوا کہ بہت سارے جو ان کے اپنے سمرتھک بھی تھے وہ بھی ناراض ہوگا کہ آپ الیکشن لڑ رہا ہو, اور جب الیکشن لڑ بھی رہا ہو تو اس کے بعد ہیرا پھیری کی ہے اس کے اندر.
آخر 10 نومبر کو سینا پرمکھ جنرل ولیمز کلیمن نے ہستکشیپ کیا اور مورالیس سے راشٹرپتی کے پد سے استعفی دینے کے لیے کہا.
Y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del estado.
دیش کے بھیتر کی استھتی کو دیکھتے ہوئے ہم راشٹرپتی سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ پد تیاگ دیں اور شانتی بنائے رکھنے میں مدد کریں. بولیویا کے استھائیتو کے لیے یہی بہتر ہوگا.
پروفیسر اپراجیتا گنگوپادھیائے کہتی ہیں کہ بولیویا میں جو ہو رہا ہے اسے لیتھیم کی بھومکا کے مد نظر بھی دیکھا جانا ضروری ہے. بولیویا نے 2019 میں لیتھیم کی کھدانوں کے لیے چین کے ساتھ قرار کیا تھا. سینا اس کے ورودھ میں تھی.
بولیویا میں لیتھیم کے ڈپازٹ بہت زیادہ ہیں. فیکٹ ساؤتھ امریکہ میں اس تین کنٹریز کو ارجنٹینا, بولیویا اور چلے کو لیتھیم ٹرائنگل کہا جاتا ہے. اس میں کچھ ایک ملٹری کا اپوزیشن رہا ہے اور ملٹری جو ہے وہ ٹریڈیشنلی بڑی کنزرویٹو ہوتی ہے اور رائٹ ونگ ہوتی ہے. بڑے سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یونائیٹڈ اسٹیٹس کا رول ہے لیتھیم مائنز میں پوری طرح کنٹرول اگر چائنیز کا رہا تو یہ امریکہ کے لیے ایک دقت ہوگا.
مورالیس نے راشٹرپتی کے پد سے استعفی دے دیا اور آروپ لگایا کہ دکشن پنتھیوں نے ان کا تختہ پلٹ کیا ہے. اس کے بعد مورالیس دیش چھوڑ کر شرن لینے کے لیے میکسیکو پہنچے. 12 نومبر کو مورالیس نے دعویٰ کیا کہ اگر بھیڑ نے ان کے گھر میں لوٹ پاٹ کی ہے اور اسے جلا دیا ہے. 12 نومبر کو ڈپٹی اسپیکر جینینے اینیاس نے خود کو دیش کا انترم راشٹرپتی گھوشت کر دیا. جینینے 2006 میں سمویدھان سبھا کے لیے چنی گئی تھی اور مورالیس کی کٹر ویروتھی رہی ہیں. پروفیسر اپراجیتا بتاتی ہیں کہ جینینے کو ان کے دکشن پنتھی جھکاو اور مول نواسیوں کے خلاف بولنے کے لیے جانا جاتا ہے. سال 2013 میں جینینے اپنے ایک ٹویٹ کے کارن چرچا میں آئی تھی جس میں انہوں نے لکھا تھا, میں بولیویا کو شیطانی آدیواسی رواجوں سے آزاد دیکھنا چاہتی ہوں. یہ شہر آدیواسیوں کے لیے نہیں ہے, انہیں چاکو میں ہی رہنا چاہیے. ایوو مورالیس کے دیش چھوڑ کر جانے کے بعد جینینے نے کہا کہ مورالیس اگر دیش واپس آئے تو چناؤ میں دھاندلی کرنے اور ان کی سرکار پر لگے بھرشٹاچار کے آروپ کے کارن انہیں قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. بولیویا کی سڑکوں پر رویوار اور سوموار کو ایوو مورالیس کے سمرتھک اور مول نواسی اترے. انہوں نے کئی شہروں میں پوری طرح چکا جام کر دیا. پروفیسر عبد النافع کہتے ہیں کہ مول نواسیوں کو لمبے عرصے تک مکھیہ دھارا سے باہر رکھا گیا تھا اور ان کی اندیکھی کرنا اب اتنا آسان نہیں رہے گا.
بہت سارے ایسے علاقے ہیں انڈیجنس کا کہ بہومت کافی زیادہ ہے اور وہ گڑھ ہے ان کا, جیسے کوچا بمبا وغیرہ کے علاقے ہیں, وہاں کافی مجھے لگتا ہے یہ مار دھاڑ چلے گی.
بولیویا میں فی الحال سنگھرش پہچان کا ہے, مول نواسیوں کی پہچان کا جو جن سنکھیا کا 41% ہے. آگے سرکار کس کی بنے گی اور اس کا جھکاو کس طرف رہے گا یہ کہنا ابھی مشکل ہے, لیکن امید پھر بھی باقی ہے.
بولیویا پر آپ دنیا جہاں سن رہے تھے, جسے کی پیش کر رہی تھیں ہماری سہیوگی مانسی داش. اور کارکرم میں اس سے پہلے کہ ہم آپ سے ودا لیں, مکھیہ سماچار سننے کا وقت ایک بار پھر سے آ گیا ہے.
بی بی سی سماچار. برٹن کے شاہی پریوار کے سدسیہ پرنس اینڈریو نے شاہی دائتوں سے پیچھے ہٹنے کی گھوشنا کی ہے. اسرائیل میں حال ہی میں ہوئے عام چناؤ کے 2 مہینے بعد پھر سے گٹھ بندھن سرکار بنانے کے پریاس وفل ہو گئے ہیں. پردھان منتری بنیامن نتنیاہو کے مکھیہ پرتدوندی بینی گینٹس نے گھوشنا کی ہے کہ وہ انہیں دیے گئے سمے تک کوئی بھی سرکار بنانے میں اسمرتھ رہے ہیں. صومالیہ کی ایک جانی مانی کاریکرتا کی راجدھانی موگادشو میں گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ہے. अलमास अलमान अहमद अपने पिता अलमन अली अहमद द्वारा स्थापित शांति संगठन के लिए एक बैठक में भाग ले रही थी। उनके पिता की भी मोगदिशु में 10 साल पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की जांच से जुड़ी सार्वजनिक सुनवाई को लेकर टेक्सास में एक एप्पल फैक्ट्री के दौरे पर पहुंचे ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए इस सुनवाई की निंदा की है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के आज के अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे रविशंकर कुमार। मोहनलाल शर्मा को अपने समस्त सहयोगियों के साथ विदा दें। शाम को दिन भर में मुलाकात होगी। नमस्कार।